awakening to a new way of living.
मन इतना बेचैन तो क्यों है, इस दुनिया में खोया क्यों है, आंखों में तो ख्वाब सजाकर दिल में लेकर बैठा क्यों है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ओम शांति। दर्शकों, इस मन का नाम पूरे दिन भर में हम कितनी बार लेते हैं, पर क्या हम मन को जानते हैं? मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं लगता, माई माइंड कांट कॉन्सेंट्रेट, ये कहकर हम मन को ही दोषी बना देते हैं। तो क्या विधि है मन को मनाने की, कंट्रोल करने की? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही टेढ़े प्रश्नों के सीधे जवाब। टुडेज सेशन इज ऑन मास्टरिंग माइंड एंड मेमोरी। वी शैल बी लिसनिंग टू सम ग्रेट स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ब्रदर बी के चार्ल्स हॉग फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया, Sister Aruna from Kuwait, Dr. E.V. Swaminathan from Kerala, Mr. Ashwin Fernandez from Singapore, and Dr. Madhukar Maruti Wavade from New Delhi. So let's begin. First of all, we want to invite Brother B.K. Charles Hogg. He is Director of Brahma Kumari Centers in Australia. Having practiced meditation over the past 40 years, Charlie Bhai is internationally a much sought-after meditation teacher, speaker, and retreat leader, and his journey has taken him to 80 countries. Let us listen to Brother Charlie and understand his insights on today's topic.
It is really my great pleasure to join this very important conference and share a few thoughts on new education for a new era. I'm actually sitting in Melbourne at the Brahma Kumaris Retreat Centre. The Brahma Kumaris have about 40 centres around this country. And for many years have really been, I would say, offering a new education for a new era. And I feel seeing our world recently, even though most of us have university degrees, but we feel there is definitely a new learning that our world needs. And I feel that there's probably three types of education that we need for a full life, a whole life these days. The first, I would say, is the education for the intellect. Sometimes perhaps we would call it our IQ, and this is really what we experience at school for many years. This education is so important because it gives me an intelligence to pass exams, create a career, make money. And this is a very important aspect of life. But if I feel anxious, if I feel depressed, if I feel afraid, if I feel stressed, if I feel even hopeless about myself, does this sort of education or wisdom help me? I don't think so. The second type of education I would say that is very important for life is the education of, shall we say, emotional intelligence, which I would say is the intelligence to build rich, loving relationships with others. How important is this in life? I often say to leaders, you may have all the skills. You may have an MBA, a Master's of Business Administration. But the best leader is a leader who has emotional intelligence, has the wisdom, the intelligence to read other people and know what they need, know how to respond. Actually, mothers are often the best at emotional intelligence. They can read other people and know what they need. And this is why often I find mothers are sometimes the most powerful leaders today. But once again, we might have emotional intelligence. We might have a good education in that, if I can say that, in the classroom of life. But if I feel rejected, if I don't feel loved, if I don't feel respected or valued, does this intelligence help or education? I don't think so. The education we need for the new era, I would say, is spiritual education, spiritual intelligence. And I'm sure all of you would agree with me. If emotional intelligence is the wisdom to build rich, loving relationships with others, I would say spiritual intelligence is the wisdom to build a rich, loving relationship with me. I would say this is absolutely the most important thing in our world today. Look at our dysfunctional planet. Look at the chaos, the increasing chaos and dysfunction out in the world. Where does it begin? It begins in each human being in the relationship of me with me. The first relationship in life is with me. If this relationship is unhealthy, it honestly pollutes my health. It pollutes my relationships in the family. It pollutes my performance in the workplace. And together, 7.8 billion human beings, if all of them have an unhealthy relationship with ourselves, what happens in the world? I've been associated with the Brahma Kumaris now for 45 years, and this university is teaching a new education for a new era. And it actually is teaching me to know who I am and experience who I am. And what I was taught when I started this new education was that there's three personalities inside of me. Two of them make me peaceless. Two of them make me negative. Two of them increase the dysfunction of me and the world around me. But one of them, one new education, actually begins a foundation of a new world and a new era. The first personality is the eye of arrogance. It's my ego, which comes from my temporary identity of my body. When this rules my inner world, I compare, I think I'm better, I know more. When it comes into my feelings, I feel insulted, disrespected, not valued, excluded. I would say sensitive. And so when I'm feeling these feelings, know my ego is ruling in my inner system. The second eye is the eye of lack of self-respect, the eye of disheartenment, the inverted ego, if you can say. This eye is ruling our planet at the moment. And this eye also takes this whole sense of identity from my temporary body. And when this eye is ruling, I compare and I think, I'm no good, I'm hopeless, others are better. And when it comes into my feelings, that's when I feel inadequate, you know, inferior, depressed. And this is why we go up and down, because our education has told us that I'm a temporary body and these are the two children. What the Brahma Kumaris teach is, who am I? Not just that I'm a soul, but deeply how to experience. And when I experience myself as a soul, I come back to a place in myself where I feel completely peaceful. And I learn the art of letting go the consciousness of all my labels, whether it be of gender, of nationality, of religion, and establishing, experiencing who I am. And when I experience who I am, the fragrance of my mind colors me, my family, and my world. When many of us begin to change and have this new education, we become instruments to create a new era in this world. So I really hope all the deliberations of the conference are very special, and I hope that all of us come together with this new learning, this new spiritual learning, to create a new era. Thank you so much, and greetings from Australia to everyone participating in this conference. Thank you.
Lots of appreciation and thanks to Brother Charlie for his great words. Moving forward, we would like to invite Sister Aruna Ladva amongst us. Sister Aruna is one of our experienced and dedicated teachers helping promote this yogic art. She has helped to establish meditation centers in Vancouver, Canada, Istanbul, Turkey, Manama, Bahrain, and Kuwait. She is a superb author and has written 8 books on a wide range of topics related to spirituality and life. Here she is sharing her ideas on today's subject.
Om Shanti and greetings of peace to my brothers and sisters. Welcome to a new education for a new era. Today we have gathered together to talk about a new kind of education. We all did the 3 hours at school, or most of us. But here, we want to talk about the inner learning, or sometimes we say the inner unlearning. To really step away from our old habits and ways of thinking, restrictive thinking, to embrace a new positive, empowering kind of learning. School taught us to be good people, to be moral people. Here, spirituality teaches us to be divine people, to really act out of virtue and not out of vice. I have seen in Raja Yoga meditation how children have developed that memory power, concentration power. I've seen old mothers also develop memory power despite their age, but also develop a very strong confidence within themselves, a kind of courage, you might say. I've seen corporate people learn to deal with enormous numbers of people, enormous employees. I have seen the health workers, again, manage under such stressful situations. So how is this all possible? It's possible because on a daily basis, these people are working to empower themselves from the inside out. Life or the world had taught us to empower ourselves from outside in. So yes, we got the good job, we got the good position, we got the good pay packet. But isn't that like self-limiting? What if the pay packet goes? As we are seeing now, what if one loses their job? What if one loses their position? Then what are we today? So spiritual education teaches us that we are something despite what we do. As in the expression that a diamond is always a diamond, even if it's in mud. So we are precious. We are invaluable. And our identity should not be based on what we do, but what we are. Again, our identity should not be based on what we do, but what we are, what we be, not what we do. We say human beings, but we're mostly human doings. And so, I would like to say that as we take on this path of Raja Yoga meditation, it really is a chance for us to see with the third eye, the third perspective. In fact, all the concepts of yoga meditation, they are so practical in our day-to-day life. It is like an education. In fact, we study. And in this study, there are children, middle-aged people, seniors, everybody studying the same study. And it's amazing. We're all sitting in the same classroom and we're studying the same concepts. So one of the concepts is about being the divine being. I am an eternal soul. I am an empowered soul. And as I sit in meditation and I really begin to feel this, I'm able to bring that experience out into my daily life. Then I'm able to deal with everything with that inner power. We also learn about God, that God is the higher source, the higher power. And we need to recharge with God. Just as I'm saying, my phone is running out of battery, so I need to charge it soon. In the same way, I need to connect with God once a day. Otherwise, what is my powerhouse? We think all these limited situations are our powerhouses. We go to the restaurant, we go to the park, we might go shopping, we might have a haircut. We might just hang out with friends. That's all limited fueling up. But the ultimate fueling is of the soul, and that is only possible when I really connect with the one God. Then we also talk about karma. And karma is a very ingrained philosophy in Bharat. And we are all lucky that we've grown up with this concept. For the Western world, it's not so easy always. That as you sow, so shall you reap. So if I'm reaping today what I have sown yesterday, then I'd be worried about planting today what I would like to reap tomorrow. And this is something that we forget. We forget that if I want tomatoes tomorrow, I better plant those tomato seeds today. So if I want love tomorrow, I better plant the seeds of love today. And if I'm not reaping certain seeds, such as respect, such as kindness, then I need to ask myself, have I been sowing those seeds? And it's never too late. I can start now. I can start this moment to just start being kind, to start being loving. Because we know that whatever we put out, it comes back to us. So this is karma philosophy. Then we also have the concept of the timeline, that we believe that time is cyclical and it's not linear. So that means there was Satyug, Treta, Dwapar, Kalyug. We do believe in this, but we also believe that we've come back to the same point that we had started. And that is that it's time to go home. It's really time now to settle all our karmic accounts and make the soul absolutely pure, absolutely clean, so that it's ready to go home. So Raj Yoga meditation actually gives us a purpose to our being. It gives a purpose to our meditation. And it's not just relaxation. I believe there's many meditations that can help you relax. But Raj Yoga meditation really helps you to transform your sanskars, to really transform your personality. So when you try it, and you have to try it to believe it, don't take my word for it, but when you really try it, you will see the impact the meditation has, and it can be immediate. I'm living in the Middle East countries and giving the meditation course to many people. And within the first few lessons, they begin to see the impact. So it doesn't take long. Sometimes people ask me the question, well, how long does it take to have a wake-up call or a realization or an experience? And it could be instantaneous. You just have to sit, you just have to focus, give it your time and energy, sincere, authentic time and energy, and definitely you will bear the fruits of that. Finally, I would like to say that this sense of seva, the Brahma Kumaris always talks about this sense of seva, and that when we really come together to help each other, that's also building of community. Because we have to learn to coexist together. This is something that perhaps was missing in the world. Everybody became very self-isolated, very independent. Everybody wants to be independent. There are nuclear families and everybody's kind of minding their own business. But crisis situations like this teach us that we actually have to help one another. We have to be of seva to one another. And the greatest happiness is in the giving. The greatest happiness is not in the taking. Ask yourself. In fact, you try it. When you get a present and when you give a present, in which one, in which aspect is there the greatest happiness? And it will be in the giving. And so here too, I encourage you that just every day think to do something special for somebody else and you will be uplifted. You will feel better for it. You will get the energy to live another day and another day and another day. And the thing about seva is when you bring a smile to somebody's face, you cannot stop but continue with the next and the next and the next. And this is the sense of seva that also helps us to create the good karma. In fact, seva brings us out of our selfishness, out of our selfish personality, and then we're able to be of service to others. So I'd like to leave you with a story. And the story, you might have heard it, it's of a school teacher, and he brings a bunch of balloons to school, and he asks the children to blow up these balloons and then to put their name on it. And then he says, okay, just let the balloons all mix up together. So the children blow up the balloons, put their name, throw it in this big space, and they're all mixed now. And he says, okay, now everyone go and find your balloon. So of course everybody's scrambling to find their balloon, and it's a very, very frantic energy. And it's been 5 minutes and nobody's been able to find their balloon. And then the teacher blows the whistle and says, okay, stop. Pick up the balloon that's in front of you. Whose name is on it? Go and give it to that person. And they did this exercise and it was over in 2 minutes. So this is my point. I'm trying to reflect that as we be of service to others, we're able to get the task done quicker. And so there's a very beautiful saying that if you want to go fast, walk alone. But if you want to go far, then walk together. And so this is what I encourage you to do. To stay in community, to coexist, to continue the learning, the spiritual learning. Bring into your lives the spiritual value. Because I really believe that to make relationships work, we really need divine values in our life. We need to give each other that space. We need to respect each other. And it's only spirituality that can help us get through times like this. So this is why we're saying it's a new kind of education. Some people are already on the path in their own way, no doubt. But just be open to the new learning, and life will teach us new lessons. And we will be so grateful for it when we have learned the lessons. So wishing you all the best. Thank you so much for listening. Om Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिस्टर अरुणा. दर्शकों, मन एक बार काबू हो जाए तो मेमोरी पर काम करना आसान हो जाता है. माइंड और मेमोरी का चोली दामन का साथ होता है. तो अब माइंड के साथ मेमोरी को भी कैसे शार्प बनाए, उसकी शिक्षा तो एक प्रोफेसर ही दे सकते हैं ना. इसीलिए हम आमंत्रित कर रहे हैं ब्रदर डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन को, जो एक ट्रेनर, टीचर, काउंसलर और कंसल्टेंट भी हैं. उनका लक्ष्य एक मूल्यनिष्ठ समाज की रचना करना है. आपने 100 से भी ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भाषण किया है और कई अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं. आइए सुनते हैं ब्रदर डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन से मन और मेमोरी के मास्टर कैसे बने.
Om Shanti or Namaskar. I'm Dr. E.V. Swaminathan, welcoming all of you, my dear friends, for today's session on Mastering the Mind. I'm interacting with you from God's own country, Kannur, Kerala. It's a great pleasure to meet all of you. मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे. I start the today's session with a very wonderful anecdote. It so happened that a young man was enjoying his journey on a hot air balloon. Ek yuvak ek hot air balloon mein yatra kar rahe the. And as he was enjoying his journey, suddenly he gets lost. And his balloon starts wandering here and there. He needed help. Aur achanak ye yuvak us hot air balloon se dekhte ek niche ek vyakti chal raha hai. Us yuvak is niche wale vyakti ko bulate. Hello, sir, can you help me? ये जो नीचे जो व्यक्ति था वो कहता है, यस आई कैन हेल्प यू, टेल मी व्हाट हेल्प डू यू वांट. ये युवक जो बलून में था वो कहता है, सर कैन यू टेल मी वेयर आर माई राइट नाउ एंड व्हाट इज माई लोकेशन. तो ये व्यक्ति जो नीचे खड़ा था वो कहता है, यस आई विल टेल यू वेयर आर यू राइट नाउ, यू आर 60 feet अबव द ग्राउंड, 30 degree लैटिट्यूड, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. इन द हॉट एयर बलून वो युवक इस व्यक्ति का जवाब सुनता है और उनसे पूछता है, सर बाई एनी चांस आर यू अ टीचर. तो ये कहता है, परफेक्टली राइट, हाउ डू यू नो दैट. तो युवक जवाब देता है, सर यू हैव गिवन मी टन लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बट नन ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज हेल्पिंग मी राइट एट दिस मोमेंट. ये व्यक्ति कहता, हॉल्ट, आई एम श्योर यू आर अ स्टूडेंट. तो युवक कहता, सर परफेक्टली राइट, हाउ डू यू नो दैट. So the teacher says, you do not know where are you coming from, you do not know where are you supposed to go, still you have the courage to criticize the teacher. Who else you could be other than a student? Now that's a very wonderful equation between a student and a teacher. Aur aaj ke samay par, what we have seen in the present academic circle, both the student as well as we teachers are in a complete state of chaos, confusion, and we do not know what are we supposed to do. In this particular context is what we are going to discuss today. How do we master the mind? And that's what we are about to understand in this beautiful journey. My dear friends, it is said, life is a question of options. Life is a question of choice. तो मैं आपको दो ऑप्शन बताता हूँ, ये दोनों ऑप्शन आप सोच समझ कर सही ऑप्शन को चूज करना. पहला ऑप्शन ये है कि आज जीवन में इतना प्रॉब्लम है, इतना संघर्ष है, इतनी चुनौतियां हैं, ये सब ठीक हो जाएगा, देन मैं अपने मन को शांत स्वरूप और स्थिर स्वरूप में लेकर आऊंगा. वंस दिस प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व, देन आई विल ब्रिंग माई माइंड टू अ स्टेट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी. दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन ये है कि इफ आई ब्रिंग माई माइंड टू अ स्टेट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, देन आई गेट द इनर स्ट्रेंथ टू मैनेज ऑल दिस चैलेंजेस. दोस्तों, अगर मैं अपने मन को शांत स्वरूप और स्थिर स्वरूप में लेकर आता हूं, तो मेरे अंदर वो शक्ति डेवलप होती है ताकि मैं इन चुनौतियों का सामना कर सकूं. और ये दोनों ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सेकेंड ऑप्शन को ही चूज करेंगे. राइट? सो दिस इज वॉट वी कॉल इट एज एन हाइपोथेसिस. और इस हाइपोथेसिस को हमें एक्सप्लोर करना है, एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपीरियंस करना है. दोस्तों, ये जो थियोरी है, इसके प्रति थोड़ा विचार मंथन करना है, खोज करना है, फिर उसका हम प्रयोग करेंगे और फिर इसका हम अनुभव करेंगे. एंड दैट्स वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स हु आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम टू मेक अ स्मॉल चेंज. एंड अ स्मॉल चेंज वी शुड ब्रिंग इट टूडे इन द वे वी कम्युनिकेट. आज से जब हम अपने बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, तो एक छोटा सा हम परिवर्तन करें. और क्या परिवर्तन करना है? आज तक हम अपने स्टूडेंट्स को यह डायलॉग बोलते थे कि आई वॉन्ट यू टू बिकम सक्सेसफुल. मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में विजय बने, सफल बने. आज से हमें यह परिवर्तन करना है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू बिकम सक्सेसफुल, वी शुड टेल देम, माई डियर स्टूडेंट्स, माई डियर चिल्ड्रेन, आई वॉन्ट यू टू बिकम पीसफुल, स्टेबल एंड हैप्पी. और जैसे ही हम ये इनपुट अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, तो हमारे बच्चे पता क्या करेंगे? आज तक वो गूगल में सर्च करते थे हाउ टू बिकम सक्सेसफुल. जैसे ही हमारे छोटा सा परिवर्तन देखेंगे, वो अपने गूगल में सर्च करेंगे हाउ टू बिकम पीसफुल, स्टेबल एंड thereby हैप्पीनेस. द कोरोना वायरस हैज शेकन अस टू अवेकन अस टू दिस ब्यूटिफुल रियालिटी. कि आज तक जो हम सफलता के पीछे भाग रहे थे, हमें मन में शांति, मन में स्थिरता, और ये जब आ जाता है तो जीवन अपने आप सुखमय बन जाता है और हम धीरे धीरे सफलता की तरफ चलने लगते हैं. और आज अपने मन को मास्टर करने के लिए हम तीन बातें देखेंगे. द फर्स्ट वन इज हाउ डू वी मास्टर द माइंड, नंबर टू हाउ डू वी मास्टर आवर इमोशंस, एंड नंबर थ्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ डू वी मैनेज एंड मास्टर दिस सेल्फ. ये तीनों बातों को आज के हम सेशन में कवर करेंगे. पता है दोस्तों, पुराने जमाने में जो शिक्षा प्रणाली होती थी ना, वो प्रकृति के बीच में होती थी. खुला आसमान है ना, धीमी धीमी ठंडी हवा बह रही है, नदी के किनारे. और जब प्रकृति के बीच में बैठकर कुछ पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारा जो मन है उसको बहुत प्यार से, बहुत दिल से उसको स्वीकार करता था. तो आज मैं आपको एक छोटा सा संदर्भ बताता हूँ. हम टीचर्स के लिए आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपने घर में बंद हैं और हमारे विद्यार्थी जो हैं अपने घर में बंद पड़े हैं. एंड व्हाट द मेथोडोलॉजी ऑफ पेडागॉजी दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ टुडे इज एन ऑनलाइन टीचिंग. हम साइंस को, टेक्नोलॉजी को यूज कर ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं. और ये अपने इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी. चुनौतीपूर्ण ये है क्योंकि शायद हमारे विद्यार्थी हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को समझते हैं, लेकिन एक ऑनलाइन टीचिंग कैसे करना है उसकी टेक्नोलॉजी आप और हम धीरे धीरे सीख रहे हैं. लेकिन ये तो हम धीरे धीरे ये स्किल जो है हम ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, लेकिन चैलेंज पता क्या आ रहा है आज हमको? उन दिनों को याद करिए जब हमारे क्लासरूम में 60 बच्चे होते थे और हम वहां पे प्रत्यक्ष उनके सामने खड़े होते थे और हम टीचर्स हमेशा स्टाफ रूम में यह डिस्कस करते थे कि बच्चे बिल्कुल एकाग्र नहीं हो रहे हैं, उनका मन इधर उधर भटक रहा है। नाउ जस्ट इमेजिन द सिचुएशन फॉर टुडे, जहां पर हमारे बच्चे जो है रूम के अंदर चारों तरफ गैजेट्स है, राइट, कोई उनको देख नहीं रहा है। और ऐसे समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा अपने मन को एकाग्र होकर उस बात को समझना जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय पर हम अपने मन को कैसे मास्टर करें। मुझे याद आता है जब मैं उस स्कूल में पढ़ता था, सेवेंथ या एट स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी, इतनी ब्रिलियंट टीचर थी और वाणी इतनी मधुर थी कि कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक बहुत अच्छा संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी, एंड अ फेवरेट वन लाइन सॉन्ग वॉज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ाना आरंभ करती थी, फिर वही गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मुझे मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता था, मैं बैठकर गिनता रहता था कि आज मैडम ने ये गीत कितनी बार गाया। एग्जाम नजदीक आ रहे थे, मैडम फुल स्पिरिट में थे, एक डजन से ज्यादा बार वही गीत गाया। तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। शी लुक्ड एट मी, स्टेड एट मी, स्माइल्ड एट मी एंड सेड, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। कॉन्सेंट्रेशन क्या, ये तो बच्चों को सिखाया नहीं, एंड वी एक्सपेक्ट आवर किड्स टू कॉन्सेंट्रेट। मुझे याद आता है उस दिन जब मैं घर में गया तो मैंने अपने पापा से पूछा, पापा व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। मुझे पापा का चेहरा देखकर समझ में आ गया कि उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस था। उन्हें मुझे देखकर कहा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ध्यान। मैंने पूछा, पापा ध्यान क्या होता है। फोकस ऑन योर स्टडी स्वामी। तो मैंने पूछा, पापा फोकस कैसे करते हैं। एकाग्रता से पढ़ाई करो। तो मैंने पूछा, पापा एकाग्रता क्या होता है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। तो मैंने पापा से पूछा, पापा यही तो मैं पहले पूछ रहा था, और आप जो मुझे बता रहे थे ना पापा, उसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, सिमिलर वर्ड्स, हिंदी में उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, राइट। मुझे याद आता है दूसरा दिन जब मैं क्लास में गया तो मेरी वो टीचर ने आकर सबसे पहले मुझे कहा, स्वामी यस्टरडे यू आस्क्ड अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, यू आस्क्ड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी टू एक्सप्लेन व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैंने कहा प्लीज बताइए मैडम। उन्होंने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई, पांडवास और कौरवास के जो गुरु जो थे ना, वो गुरु द्रोणाचार्य थे। तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को इसी तरह सुंदर प्रकृति के बीच में लेकर आए, और एक पेड़ था और पेड़ में एक पंछी थी। तो सभी शिष्यों को गुरुजी ने कहा, आपका लक्ष्य है उस पंछी के आंख। और फिर उन्होंने सबसे पूछा, अच्छा बताइए आपको क्या दिख रहा है। तो सभी शिष्यों ने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे उसके ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, मुझे उसके पत्ते दिखाई दे रहे हैं, वो पंछी दिखाई दे रही है। उसमें सिर्फ एक शिष्य था जिसने बड़े ध्यान से गुरुजी को कहा कि गुरु मुझे सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई दे रही है। और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने उनको कहा, यस अर्जुन हैज अंडरस्टूड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता क्या है। और मेरी मैडम ने यह कहानी सुनाकर कहा, स्वामी दिस इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन। उस दिन वो क्लास खत्म होने के बाद जब मैं इंटरवल हुआ तो मैं क्लासरूम के बाहर आया, और वहां पे इतने सारे हमारे स्कूल कैंपस में वो पेड़ थे, तो मैंने एक पेड़ के सामने खड़े होकर देखा कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो पेड़ दिखाई दे रहे थे, ब्रांचेस दिखाई दे रहे थे, पत्ते दिखाई दे रहे थे। मैं उस पेड़ को जाके ढूंढा जिसमें पंछी बैठी थी, तो मुझे पंछी भी दिखाई दे रहा था, बाकी सब भी दिखाई दे रहा था। तो मैं दौड़कर आकर स्टाफ रूम में आया और उस मैडम को कहा, मैडम कैन यू प्लीज कम आउट फॉर सम टाइम, व्हाट इज इट स्वामीनाथन। मैंने कहा, मैडम एक मिनट के लिए आप बाहर आइए, तुम ना मुझे बहुत परेशान करते हो। फिर भी मैडम मेरे साथ आई और मैं वो पेड़ के सामने खड़ा हुआ, मैडम को पूछा कि मैडम आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो मैडम ने कहा, स्वामीनाथन सच अ स्टूपिड क्वेश्चन, पेड़ दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा, मैडम मुझे भी वो पेड़ दिख रहा है, मुझे भी वो ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी वो लीव्स दिखाई दे रही है, लेकिन आपने तो कहा था कि अर्जुन को सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई दे रही है। मींस मैं तो अर्जुन नहीं बना ना। एंड माय मैडम स्टार्टेड थिंकिंग फॉर अ मिनट एंड सेड, स्वामी दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, यू ऑल्सो थिंक अबाउट इट। और फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर आपको इसका जवाब मिलता है तो प्लीज मेरे पास आकर मुझे इसका जवाब जरूर देना। उस दिन मैंने एक अच्छे शिक्षक की निशानी क्या होती है मैंने समझा। It is not that we teachers need to know the answer of every question. But what is very, very important I learned from my wonderful teacher is, we need to be humble, we need to be polite. हमें बहुत नम्रता पूर्वक इस खोज में चलना चाहिए. तो अर्जुन ने जब कहा कि मुझे सिर्फ उस पंछी के आंख दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है अर्जुन को उस एकाग्रता का रहस्य मालूम था. तो आज जरूरी ये है कि आज जो हम और हमारे विद्यार्थी जो साधनों के बीच में फंसे हुए हैं, इतने सारे टेक्नोलॉजी के बीच में हैं, दिस एंशिएंट नॉलेज एंड दिस एंशिएंट विजडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उस साल के बर्थडे में मेरे पापा ने मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और गिफ्ट एक बहुत सुंदर किताब थी. उस किताब के फ्रंटलाइन पेज में स्वामी विवेकानंद का फोटो था और उसमें लिखा था राजयोग. और मेरे पापा ने कहा, स्वामी विवेकानंद वॉज नोन फॉर हिज पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. और उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद यूज टू प्रैक्टिस अ टेक्निक विच इज कॉल्ड एज राजयोग. आप ये किताब पढ़िए तो शायद आपको एकाग्रता क्या है समझ में आ जाएगा. मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मच ऑफ वॉट इज राजयोग. लेकिन आज से 25 साल पहले आई हैड अ चांस टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एट माउंट आबू. और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये समझ करके कि ब्रह्मा कुमारीज की फैकल्टी ऑल्सो टीचर्स अस दिस टेक्निक ऑफ राजयोगा. तो दोस्तों, राजयोग दो शब्द से बना हुआ है, एक है राज और दूसरा है योग. चलिए इस यात्रा में हम बहुत सारे मन और भावनाओं को कैसे मैनेज करें उसके रहस्यों को हम जानेंगे. सो फ्रेंड्स, मास्टरिंग द माइंड मीन्स अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. एकाग्रता को समझते हुए अपने जीवन में उसको अप्लाई करना. और कंसंट्रेशन सिर्फ विद्यार्थियों को या शिक्षकों को सिर्फ जरूरत नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में हमें एकाग्रता यूज करना पड़ता है. आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आप अगर भोजन बना रहे हैं, और सफलता के किसी आयाम तक पहुंचने के लिए एकाग्रता बहुत बहुत जरूरत है. और अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को सब कुछ चीज सिखाते हैं. We download so much of information to our students, but I think this technique of concentration ought to be taught at a very, very early age. तो आज concentration हम समझेंगे, उसके लिए एक बहुत सुंदर जो technology है वो है राजयोग. और यहां पर हम राजयोग के द्वारा जो समझेंगे, it is mastering our emotions. और इस राजयोग में सबसे पहले हमें समझना है कि ये मन क्या है. इनफैक्ट वॉट इज माइंड. माइंड इज अ बंडल ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस. हम जो संकल्प करते हैं और संकल्पों के पीछे जो भावनाएं होती है, हमारी इमोशंस जो होते हैं, और किसी भी संकल्प में जब वो भावना जुड़ती है, दैट बिकम्स एन एवरलास्टिंग काइंड ऑफ ए मेमोरी. वो हमारी स्मृति बन जाती है. इसलिए आज हम लोग सिर्फ इंटेलिजेंस की बात नहीं करते हैं, हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं. अर्थात सिर्फ हम बुद्धिशाली नहीं बने, लेकिन भावनात्मक स्तर पर बुद्धिशाली कैसे बने. और आज के समय चारों तरफ जितना डर है, भय है, अनिश्चितता है, केओस कंफ्यूशन, ऐसे समय पर शांति, प्रेम, स्थिरता, खुशी, आनंद के इमोशंस को समझना और जीवन में अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन द प्रेजेंट टाइम मोर देन आईक्यू व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट. एंड वी ऑल नो कि व्हाई डिड द शिफ्ट फ्रॉम आईक्यू टू ईक्यू टेक प्लेस. जैसे अगर आज एक विद्यार्थी एग्जाम लिखता है, एट द एंड ऑफ द 3 आवर एग्जाम्स ही गेट 60% क्यू या 80%, राइट? बट द सेम स्टूडेंट गिवन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस द नेक्स्ट डे, हिज मार्क्स कैन इंक्रीज फ्रॉम 60% to 80% to as high as 100%. इसका मतलब यह है कि IQ is not a fixed quantity. It's a variable fluctuating quantity and it depends upon a student's emotions. अर्थात जब वो विद्यार्थी examination hall में जाता है तो उसके emotions कैसे हैं? अगर वो डर गया है, भय में है, stress में है, तो automatically the EQ drips down and automatically the retrieving powers automatically comes down. इसीलिए ईक्यू बहुत बहुत जरूरत है. अब हमें समझना है कि हमारे इमोशंस कैसे हैं. सो ईक्यू के आधार पर 3 प्रकार के इमोशंस होते हैं. एक है इमोशनली स्टेबल, फर्स्ट कंडीशन, दूसरा इमोशनली ओके, और तीसरे हैं हम होते हैं इमोशनली सेंसिटिव. आई रिपीट वंस अगेन, इमोशनली स्टेबल, इमोशनली ओके, और तीसरा होता है इमोशनली सेंसिटिव. तो हम और आप किस लेवल ऑफ ईक्यू में हैं, ये समझना बहुत बहुत इजी है. और ये समझने के लिए कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है. आप अपना जो फ्रेंड्स ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें आपके दोस्त जो व्हाट्सएप में क्या क्या है ना वो पोस्ट करते हैं और अपने क्या क्या वो मैसेजेस देते हैं, उस मैसेजेस को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि हम लोग का ईक्यू कैसा है और हमारे दोस्तों का ईक्यू कैसा है. अक्सर हमने एक डेढ़ महीने हम यहां बंद थे, लॉकडाउन में थे, तो हमने देखा होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे कुछ दोस्त होंगे जो हर पल हर क्षण रिएक्ट करते रहेंगे. प्रधानमंत्री जी को ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए था, ऐसे कुछ दोस्त हमारे होंगे. और जब हम इन दोस्तों के इमोशंस को देखेंगे और हर पल हर क्षण रिएक्टिव जो मोड में होते हैं, दे आर एक्चुअली जाए तो दे आर वेरी वेरी इमोशनली सेंसिटिव. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो अमेरिका में रहता है, बहुत पढ़ा लिखा है, कंप्लीटेड हिज पीएचडी. हर पल हर क्षण रिएक्ट करते रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में है तो न्यूयॉर्क में जैसे जैसे केसेस बढ़ने लगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी उनके पोस्ट में आता था. तो एक दिन मैंने बड़े प्यार से उनको पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज भेजा. मैंने कहा, माय डियर फ्रेंड, आप इतने बुद्धिशाली हो तो एक काम करते हैं, आई विल अरेंज अ मीटिंग ऑफ यू विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. क्या आप प्रधानमंत्री के साथ आधा घंटा एक घंटा बात करके क्या प्रधानमंत्री को बता सकते हैं कि सारे प्रॉब्लम के समय पे प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, राइट? विल यू बी एबल टू डू इट? तो थोड़ा शांत हो गए. नहीं नहीं, मैं कैसे बता सकता हूं. मैंने कहा ओके, प्रधानमंत्री को छोड़ते हैं. मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वर्तमान समय पे आप अपने ऑफिस के लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं? तो बोला, स्वामी नहीं, वर्क एट होम चल रहा है लेकिन कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसे हैं वैसे हैं. मैंने कहा ओके ओके, क्या आप अपने फैमिली को, अपनी वाइफ को संभाल पा रहे हैं? तो एकदम शांत हो गए. तो मैंने कहा, वाइफ को छोड़ो, क्या आप अपने दो बच्चों को मैनेज कर पा रहे हैं? तो बोला, स्वामी आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, ठीक जगह बैठते नहीं है, पढ़ते नहीं है. तो मैंने कहा, ठीक है माय डियर फ्रेंड, बच्चों को भी छोड़ो, क्या आप अपने आप को मैनेज कर पा रहे हो क्या? आर यू एबल टू मैनेज योर ओन इमोशंस? तो वो एकदम गुस्से में आ गया, बोला, स्वामी व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजिंग द सेल्फ? तो मैंने कहा, माय डियर फ्रेंड, सारे दिन में आपको कितनी बार गुस्सा आता है, कितनी बार आपको इरिटेशन होता है? अगर सारे दिन में बार बार गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है, मतलब यू आर एक्चुअली वेरी वेरी इमोशनली सेंसिटिव. अंदर जो भरा हुआ इमोशंस है ना, वो हमको चारों तरफ हम रिफ्लेक्ट करते हैं. इसीलिए राजयोग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम दूसरों को मैनेज करने में अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारा सारा फोकस, हमारा सारा अटेंशन स्वयं के इमोशंस को कैसे मैनेज करना है वो सीखने पर हमको लगाना चाहिए. मैं अपने सभी शिक्षक दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम किसी क्लासरूम में जाते हैं तो 60 बच्चे हमें देखकर वो सीखते हैं. हमने आज तक क्लास में अगर बहुत ज्यादा चिल्लाया है, बहुत अगर गुस्से से बोला है, तो हमारे बच्चे हमको देखकर लगता है कि गुस्सा करना इज एक्चुअली वेरी वेरी नॉर्मल, ये हमको लगता है. अब मैं चाहूंगा, क्योंकि हर बच्चा अपने घर पर है, आप जब भी अपने विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैन वी इंटरेक्ट विथ लॉट्स ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस? क्या हम शिक्षक मधुर भाषी बन सकते क्या? क्या हमारी वाणी में वो मधुरता आ सकती क्या? कैन वी डेवलप दिस सेंस ऑफ एम्पथी? कैन वी अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट? आज तक हमको लगता था कि हमारे विद्यार्थी हमको सुन नहीं रहे हैं, लेकिन आज तो हम उनके घर तक पहुंच पा रहे हैं ना, तो क्या उस विद्यार्थी के माता पिता को जो चैलेंजेस हैं, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? और जब हम दूसरों के इमोशंस को समझने लगते हैं तो एक्चुअली we become, our communication becomes very loveful, our communication becomes very very empathetic. तो अगले 24 घंटे तक मैं आप सभी टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि कैन वी बिकम रोल मॉडल्स, क्योंकि चिल्ड्रन सी एंड चिल्ड्रन डू, बच्चे देखते हैं और बच्चे करते हैं, और इसके लिए राजयोग में स्वयं पर राज करना और स्वयं को समझना कि मैं कौन हूं. एंड दैट इज व्हाट वी कम टू द लास्ट एंड फाइनल थिंग. इट इज, फर्स्ट इज मास्टरिंग द माइंड, नंबर टू इज मास्टरिंग द इमोशंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राजयोग में मास्टरिंग द सेल्फ, स्वयं पर कंट्रोल करना, स्वयं को मैनेज करना. फ्रेंड्स, सोक्रेटस वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. Years back he had reported, to know thyself is education. Swayam ko janna hi shiksha hai. Aksar karkar hum teachers apne students ko ye dialogue bolte rehte the. You should have lot of self-confidence, self-motivation, self-control, self-esteem, self-discipline. Lekin self kya hai, aaj tak humne apne syllabus mein cover nahi kiya. Aur mere khayal se vartaman samay par हमें सेल्फ का डेफिनेशन, स्वयं को समझना और स्वयं के लिए महसूस करना बहुत जरूरत है. सेल्फ का जो फुल फॉर्म है SELF, सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइट फॉर्म, अर्थात मैं इस शरीर में ब्रकुटी के बीच में एक अदृश्य ऊर्जा हूं. आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, अ पॉइंट ऑफ एनर्जी. कहते हैं एजुकेशन इज नॉट फिलिंग ऑफ द वेसल but it's igniting the light within. बहुत सारे formulas, equations, derivations, definition पढ़ना दोस्तों शिक्षा नहीं है, लेकिन स्वयं के वो प्रकाश स्वरूप को महसूस करना शिक्षा है. और कहते हैं education is the manifestation of the divinity already existing in the self. अर्थात हमारे अंदर जो दिव्य गुण है, उस दिव्य गुणों को feel करना और जीवन में apply करना शिक्षा है. अर्थात आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग. मैं शांत स्वरूप हूं. मुझे बाहर से शांति देने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है. मेरा स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है और मेरे अंदर असीम शक्ति है. इस शक्ति को फील करना राजयोग है. And people who practice this technique of Raj Yoga, they are always stable. They are always able to face the situation much more effectively. इससे मुझे लगता है ये time है जहां पर हम meditation को सीखना बहुत बहुत जरूरी है. तो Raj Yoga में हमको ये समझ में आता है जैसे एक शरीर जो है ना एक मोबाइल की तरह है और हर मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है. उसी तरह आत्मा जो है सिम है. SIM, S means understanding the self. मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं. अब आत्मा के तीन सूक्ष्म कर्म इंद्रिया होते हैं, right? And that is M is mind, I is intellect, and S for संस्कार. मन, बुद्धि और संस्कार. मन जो है संकल्प करने की एक शक्ति है. बुद्धि उसका करस्पॉन्डिंग चित्र बनाती है. तो एकाग्रता क्या है? एकाग्रता ये है जब मन और बुद्धि एक साथ काम करता है. When the mind and intellect works together, it is called as concentration. तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी से पूछा कि आपको क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे उस पेड़ के उस पंछी की सिर्फ आंख दिखाई देती है. इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब हम स्थूल नेत्र से देखते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देता है. ये तो स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल. लेकिन जब अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ उस पंछी के आंख दिखाई देती है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने स्थूल नेत्र से देखने की बात नहीं की, उन्होंने अपने अंतर चक्षु से देखने की बात है. मन और बुद्धि से उस पंछी के आंख को देखना, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं थ्रू दिस कैमरा. एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू माय गुड फ्रेंड सुमेश हु इज कैचिंग मी ऑन दिस कैमरा. ठीक है, अब वो जो भाई जो बैठे हैं वो मुझे कैमरा से कैच कर रहे हैं, तो उनके पास एक फैसिलिटी है, उस कैमरा को वो जूम कर सकते हैं और सिर्फ स्वामी पर फोकस कर सकते हैं, बाकी चीज सब ब्लर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एक यंत्र से अगर हम ये कर सकते हैं, उसी तरह हम अगर सामने कुछ देख रहे हैं लेकिन देखते हुए हम अपने मन बुद्धि को फोकस अपने लक्ष्य पर कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वर्तमान समय में ये हमें अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं सारे ऑनलाइन गैजेट्स के साथ बैठे हैं। आप उनको फोटो के द्वारा, आप उनको पीपीटीज के द्वारा, आप उनको इमेजेस के द्वारा दिखा रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बच्चे कुछ समय के बाद इस साधन से डिटैच हो, राइट? जो आपने फोटो दिखाया, क्या हमारे स्टूडेंट्स, क्या हमारे बच्चे अपने मन और बुद्धि से उस चित्र को देख पा रहे हैं क्या? अगर वो बच्चे कर पा रहे हैं तो हमारे बच्चे भी अर्जुन जैसे महारथी, है ना, महायोगी बन सकते हैं। दे कैन बिकम वेरी स्ट्रांग एंड दे कैन बिकम वेरी वेरी पावरफुल। तो एकाग्रता अर्थात मन और बुद्धि, और जब हम एक ही चित्र को बार बार देखते हुए जब हम अपने कर्म में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज संस्कार। एंड दैट संस्कार इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज मेमोरी। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं यू शुड डेवलप अ गुड मेमोरी पावर। आज तक हमको लगता था मेमोरी इज रिमेम्बरिंग फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, डेरिवेशंस, बट माई फ्रेंड्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज we need to memorize our own divine positive qualities. हमारे अंदर के जो दिव्य संस्कार हैं, शांति, प्रेम और शक्ति, उसको हम जितनी बार याद कर सकते हैं, इसका मतलब है हमारी स्मृति, हमारी स्मरण शक्ति बहुत बहुत स्ट्रांग है। और जैसी स्मृति होगी वैसे शक्तिशाली होंगे। So let us summarize the lecture for today. It is first mastering the mind through the power of concentration. मन का काम विचार करना, बुद्धि का काम उसका चित्र निर्माण करना। दूसरी बात है mastering our emotions. मैं आपको request करता हूं, कैसी भी situation क्यों ना हो, आप please react नहीं करें, लेकिन stable रहें, right? क्योंकि आप इधर उधर की बातें अगर हम react करते रहेंगे, means we become emotionally weak. और emotions को master करने के लिए mastering the self, मैं कौन हूं? So I'm a point of light, very peaceful, very loveful and very powerful. ये समझते हुए let us practice this beautiful technique of Raj Yoga meditation. I welcome you to undertake this beautiful internal journey of Raj Yoga meditation. My dear friends, meditation has come from the Latin word medire, which means to heal yourself. ट्रीटमेंट हमारा शरीर का होता है, लेकिन हीलिंग जो जरूरत है वो हमारे मन और हमारी भावनाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज हम इतने सुंदर प्रकृति के जब नजदीक बैठते हैं और इस प्रकृति के सानिध्य को जब हम महसूस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम हीलिंग प्रोसेस में चलते हैं। और यहां पर प्रकृति हमसे कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रही है, प्रकृति इज इन एन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ साइलेंस, लेकिन द एनर्जी फ्लो इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी प्योर एंड वेरी वेरी पॉजिटिव। हम सबको पता है टीचर्स नीड टू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन का मतलब दोस्तों सिर्फ अच्छी भाषा, इंग्लिश हिंदी बोलना सिर्फ नहीं है, बट जब हम बोलते हैं तो शब्दों के पीछे हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट हमसे पूछता है मैडम व्हाट इज माय करियर गोइंग टू बिकम, How am I going to pass the exams? तो अगर हम टीचर्स उनके साथ बोलते हैं कि nothing to worry, everything will become okay, वो एक सेंटेंस है, लेकिन उस सेंटेंस के पीछे हमारा एनर्जी फ्लो क्या है ये तो सिर्फ हम जानते हैं। अगर हमें खुद ये डर या भय है कि द होल यू नो फ्यूचर इज वेरी ब्लीक, भले हम सेंटेंस पॉजिटिव बोल रहे हैं लेकिन हमारी जो भावना है इट्स नॉट गोइंग टू हील द स्टूडेंट। इसे मेडिटेशन इज अ मैकेनिज्म वेयर we don't communicate with outside in words, but we are in a state of silence and we try to understand our own positive divine vibrations and emotions. aur jab hum ye mehsoos karne lagte hain to hum emotionally sensitive se emotionally okay hokar we become emotionally powerful, wherein in a state of silence we are able to empower the students who are in front of us. So meditation is a three step process. It is sit and get. सेट मतलब एक जगह आप आराम से बैठिए. सेट मतलब अपने उस इनर फ्रीक्वेंसी को टच करिए ऑफ पीस लव एंड हैप्पीनेस. और फिर जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी को टच करेंगे यू आर कनेक्टेड विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस द सुप्रीम ऑलमाइटी हु इज एन ओशन ऑफ पीस हु इज एन ओशन ऑफ लव हु इज एन ओशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सर्टनली ऑफ स्ट्रेंथ. दैट व्हाट इज एग्जैक्टली इज द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन. मैं आप सबका इस मेडिटेशन की सुंदर यात्रा में बहुत दिल से स्वागत करता हूं.
Kudos to you, Brother Swaminathan. Thanks a lot for suggesting such ways to become master of our mind and memory. Now, we would like to invite Mr. Ashwin Fernandez, Regional Director of Middle East, North America and South Asia of QS Quaccarelli Simons. He works closely with universities in these regions to better understand local context and to support universities and higher educational institutions in their quest for excellence and capacity building. Ashwin was instrumental in establishing the framework for QS iGorge, India's first nationwide higher education rating system for colleges and universities. Mr. Ashwin, please share your views on today's topic.
A warm and heartfelt welcome to everyone. My name is Ashwin Fernandez. I'm the Regional Director of QS Intelligence Unit, based here in London and Singapore, with offices around the world. I'm grateful to Sri Dr. B.K. Mruthyunjaya, Executive Secretary and Chairperson for the Education Wing, Brahma Kumaris, for this kind invitation, which is why I'm here today. I take this opportunity to welcome other dignitaries on the panel and for this conference. The theme of today's conference is New Education for New India. As Regional Director, as well as CEO of QS Era India Limited, which is a subsidiary of QS in India, our aim is to promote quality and credibility for higher education institutions in India to our rating process called QS iGauge. As an education services provider, we have been closely associated with the rapid changes that are taking place in education, which is accentuated further with the advent of COVID-19. This conference, therefore, is an opportunity for all of us to learn from all the dignitaries about the impact of value-based education at all levels of teaching. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, India is known for its culture and knowledge that stems from the spiritual resource bestowed to Indians by many illuminated spiritual masters, and one of them is Brahma Kumaris, which is a worldwide spiritual movement dedicated to personal transformation and world renewal. People are becoming concerned with new kind of education, which will not merely turn human minds into machine-like resources, but will transform the soul that shines bright for the greater good. The higher education system in India has undergone a massive change in recent years. People are becoming more aware of the need to have their future generation educated for a better tomorrow. The internet is playing a key role in making information accessible to everyone. The purpose of education in India since time immemorial has been to transform the inner self and to bring the outer vibrancy into the soul. Different schools of Indian thoughts all sought to illuminate the soul and transform its journey into a meaningful one. As Rabindranath Tagore once observed, much in accordance with the Upashtavik verses, he who sees all being in his own self and his own self in all beings, he does not remain unrevealed. That should be the motto of our Indian educational institutions. The world at large is facing a tough time because of the ongoing pandemic. In this situation, everyone is looking for an answer to make sense of the disaster, either within themselves or from various platforms available today. Studies have suggested that students are the worst affected by this pandemic. Not only their education is hampered, but confusion regarding careers and life at large also stares at them. On one hand, the students had to withdraw from their daily routine, which is classroom lectures, meeting friends, sitting at cafes. Then, on the other hand, they were forced to seek answers, and most of the students could not cope up with the situation. This is not their fault alone, but of all of us together in this, who took education for granted and made it a tool only to serve the systemic demands. Many universities are now suggesting that education should have space to build inner strength and resilience of the students. They've included yoga and meditation in their daily routines to help students regain physical strength and understand the strengths of the mind and inner better self. Brothers and sisters, as an Indian, I feel very proud to be part of this conference for the second consecutive year and to hear from all dear brothers and sisters of Brahma Kumaris on connecting the mind to a bigger cause to deliver better outcomes for the entire society. I'm certain that the key messages of this exclusive conference will aid in better decisions. Once again, thank you all for inviting me, and I look forward to hearing from you all. Om Shanti.
Thanks a lot, Mr. Ashwin, for taking time and sharing your ideas with us today. Now, we have someone from All India Council for Technical Education joining us here. He is Dr. Madhukar Maruti Vavare, Deputy Director of E-Governance Cell of AICTE. आइए जानते हैं उनके विचार आज के सब्जेक्ट पर.
नमस्ते, आई एम डॉक्टर मधुकर वावरे, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. दिस कोविड 19 पैंडेमिक हैज अफेक्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. मेनी गवर्नमेंट्स हैव क्लोज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस in attempt to contain the spread of the COVID-19. This caused interruption of students' learning and disruption of the student evaluation. Previously, there was in-person learning and in-person evaluation, and these are required for the social awareness and social skills. We were using e-learning for the additional aid to get more knowledge and develop additional skills. But due to this COVID pandemic, it is forced to shift towards the online education system. Of course, online education system is having its own advantages. That is, it is student-centric, self-paced. It can be accessed from any place, any time, by anyone. It is a customized education. Wherever interest, student can select that and can learn, can develop the skills. Similarly, the good quality teachers can be available through this online education system. But as concern our country, when we are going to online system, we are facing challenges. One important challenge is that infrastructure availability. Challenge to connect all villages, all students through internet connectivity and availability of the devices such as the computer, laptop, smartphones. As per one survey, in rural area, about 4 to 5% only houses are having the laptop or computers. Therefore, we have to work. There should be government initiatives so that internet connectivity will be available at each and every village. There should be initiatives such that with low cost smartphones should be available for all students. Addition to this, e-learning, it can create social isolation, and in this, who are only interested, they can attain these online classes, online courses, and they can fairly give the examination. So, self-motivation and self-assessment is required. And to achieve this, we have to inculcate the human values among all students. And this can be done with the help of organizations such as the Brahma Kumaris and others who are working in spirituality. The students should get connected with such organizations so that they can understand the meaning of human life. Then only they can become self-motivated, they can do the self-assessment properly, and even in COVID pandemic, learning will be continued and student skills will be developed. So, I appeal all students to be connected first and to learn human values. Once it will be done, the student will really concentrate on e-learning and will get benefited. They can do the career, and whatever this pandemic, this will be opportunity for our skilled student. Thank you.
We thank all our speakers of today's session for enlightening us and empowering us. We shall be back again today evening at 5 p.m. with another enriching experience, helping you build inner strength and resilience. Yes, you heard that right. That is the topic for today's evening, and speakers from all around the world will help us to understand the subject better. Sister Jenna from Washington, D.C., USA, Mr. Louis Gossett Jr., Oscar award-winning actor from USA, Sister Denise Lawrence from Germany, and Rajyogini Sister Jayanti from London. See, such great speakers will be coming right onto your screens. So don't forget to watch 5 p.m. on the same channel. Rajyoga online course classes is education e-conference ke baad 3rd June se Zoom app ke dwara Hindi aur English bhashaon mein karai jayengi. Jo bhi bhai behne ye classes karne ke ichhuk hain, ve hamare screen par aa rahe WhatsApp number par apni details bhej sakte hain. Classes ke timings aapko WhatsApp ke dwara suchit kiye jayenge. Ab aaiye thoda jhume, nache, gaaye, kyunki Jalandhar Punjab se behad sundar cultural performance lekar aa rahe hain Nachda Punjab group. Anand lijiye is pre-recorded video ka. Hum fir milenge, abhi ke liye itna hi. Namaskar, Om Shanti.